श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है। और यह उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये चौथी पुस्तक जो धवला की, उसमें क्षेत्रानुगम, खेतानुगम जिसको कहा है, उसमें हम 36 पृष्ठ पर आए हुए हैं। यहाँ मैक्सिमम यानी उत्कृष्ट अवगाहना वाले ऐसे द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय आदि की बात यहाँ चल रही, उनका घनफल निकाल रहे हम। तो कल हमने भ्रमर का निकाला था, गोमही का निकाला था और शंख का भी निकाला था। अब ये जो महामत्स्य है उसका घनफल वो अभी निकालेंगे हम, 36 पृष्ठ पर। ये बीच में जो कल हमने शंख का देखा था, उसके बाद 1000 योजन आयाम, लंबाई 1000 योजन, ये महामत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले उनकी बात चल रही है। 500 योजन उच्छेद और उच्छेद के आधे अर्थात 250 योजन विस्तार वाले, यानी लंबाई उनकी, हाइट और उनका चौड़ाई मोटाई, महामत्स्य का क्षेत्र भी घनफल रूप करने पर संख्यात प्रमाण घनांगुल होता है। ये तो अटपटा नहीं, डायरेक्ट तीनों को गुणा करना है, 1000 गुणा 500 गुणा 250, तो 12.5 करोड़ घन योजन हो गया। अब उसके अंगुल करने हैं, विस्तार, विस्तार ने उच्छेद को हाइट कहते, ऊंचाई ने मच्छी, जो मत्स्य है वो उच्छेद है, उसकी हाइट है, और उसकी चौड़ाई, विस्तार ने चौड़ा उसका, कितना चौड़ा है उसकी बात। तो ये जो तीन डायमेंशंस बताए वो आपस में गुणा करेंगे तो हमें उसका घनफल मिलेगा। तो महामत्स्य का आयाम 1000 योजन, उच्छेद 500 योजन और विष्कम्भ 250 योजन। 250 कहाँ है? ये 250 भी योजन की बात है, 250 लिख दिया है, परंतु वो योजन समझना, वहां लिखा है ना योजन, आपने क्या क्यों पूछा? महामत्स्य का आकार, लंबाई है ना, वो तो कितना लंबा है वो तो आसान है ना समझने में, मत्स्य है, तो उससे देनी है ऐसा। अभी मत्स्य का हाइट कैसे देखेंगे हम, ऐसा ही देखें ना, और विस्तार नहीं है ऐसा आड़ा, हाँ होगा, उच्छेद तो हाइट को ही कहते हैं, विष्कम्भ नहीं कहा, यहाँ विस्तार कहा है, यहाँ लिखते हुए उन्होंने विस्तार कहा, विस्तार वाला विष्कम्भ, विष्कम्भ कहा, ये विष्कम्भ ने चौड़ाई, विष्कम्भ लिखा है, आगे लिखा है, मैं ऊपर का पढ़ रही थी, हाँ विष्कम्भ 250, वो 250 भी योजन है, तो 1000 गुना 500 ये 5 लाख हो गए, और उसको 250 से गुणा करें तो 12.5 करोड़ घन योजन हो गए, योजनों में घनफल। अब ये कौन से उच्छेद घन योजन है तो उसके अंगुल कर रहे हैं, प्रमाण अंगुल करने हैं उसके, उच्छेद घन योजन के प्रमाण अंगुल करने हैं। तो कल हमने देखा था एक घन योजन के प्रमाण अंगुल करने के लिए उसको हमने 1536 का घन से भाग गुणा किया था। ये 1536 का घन है, ये जो यहाँ संख्या लिखी है 362,38,78,656, कल हमने इसको विस्तार से देखा था। तो ये जो कितनी बड़ी संख्या है देखो, 4529 कोड़ा कोड़ी है, वे 84 कोड़ी हो गए, 84,83,200 इतने कोड़ी हो जाएगी। पहले तो हमने कोड़ा कोड़ी के ऊपर 14 डिजिट्स है, और कोड़ी कहाँ तक, वो 200 तक कोड़ी लिखना, 84,83,200 कोड़ी। इतने प्रमाण घनांगुलों में महामत्स्य का घनफल है। पहले हमने जो देखा था योजनों में देखा था 12.5 करोड़ घन योजन, उसके उच्छेद अंगुल किए, उसमें से प्रमाण अंगुल कर दिए घनांगुल। यानी इतनी बड़ी संख्या, फिर भी वो संख्या थी कहेंगे, इतना ही उनको समझाना है संख्यात घनांगुल। इस प्रकार उत्कृष्ट अवगाहना रूप से आए हुए इन प्रमाण घनांगुलों में घनांगुल के संख्यात वे भाग प्रमाण जघन्य अवगाहना को प्रक्षिप्त करके हमें एवरेज अवगाहना निकालनी है। तो ये उत्कृष्ट अवगाहना ली त्रसों में, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रियों की, और जघन्य अवगाहना कितनी है तो अंगुल का संख्यातवा भाग, वो निगोद आदि में असंख्यातवा भाग लेते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं ले रहे। यहाँ विहारवत की बात चल रही है, इसलिए त्रसों की बात है। तो त्रसों में द्विंद्रिय आदि में जो जघन्य अवगाहना है वो घनांगुल का संख्यातवा भाग है। तो मिनिमम और मैक्सिमम इनको हम मिलाएंगे और उसका आधा करेंगे तो हमें एवरेज मिलेगा। तो जोड़ हो उसे आधे से छिन्न करने पर, छिन्न करना यानी भाग देना, दो से भाग देना या उसका आधा करना, करने पर भी संख्यात प्रमाण घनांगुल ही रहते हैं यह सिद्ध हुआ। अभी जो हमने ऊपर जो प्रमाण देखा था उसको आधा करेंगे तो भी वो संख्यात ही है, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं कहेंगे, संख्यात घनांगुल कहने से ये त्रस्त जीवों की एवरेज यानी जो मध्यम संख्या कहते हैं उसकी अवगाहना हो जाती है। दूसरी बात यह है, हाँ, देखो हमें तो उत्तर मिला था उच्छेद योजन में, एक उच्छेद योजन में, एक योजन में अंगुल कितने होते हैं, 7,68,000 अंगुल होते हैं एक योजन, उच्छेद योजन में उच्छेद अंगुल कितने हैं तो 7,68,000, तो 7,68,000 अंगुल हुए। अभी इसके प्रमाण अंगुल करने हैं तो 500 से डिवाइड करना है इसको, प्रमाण अंगुल बड़े हैं ना तो डिवाइडेड बाय 500, तो ये कितना आया 1536, 500। ये तो सूचंगुल यानी सिंगल लाइन में हम देख रहे हैं, तो एक योजन इज इक्वल टू 1536 अंगुल, प्रमाण अंगुल। एक उच्छेद योजन इज इक्वल टू 1536 प्रमाण अंगुल, तो एक उच्छेद घन योजन इज इक्वल टू 1536 का घन, ख्याल है, और वही ये संख्या है 1536 का घन, क्योंकि योजनाओं को हम प्रमाण अंगुल बना रहे हैं इसलिए। हाँ अभी, हाँ वो पहले, वो कल नहीं थे ना, जल्दी गए थे। हाँ चौंतीस पर था ना, आगे वाले। हाँ वो तो खाली वो आगे वो 1536 वाला वहाँ नहीं बताया, 1536 वाला हमने डिराइव करके बताया था। 34 में तो उन्होंने अलग तरीके से बताया, उन्होंने घन करके बाद में उसका निकाला था, हमने सूचंगुल के ही प्रमाणंगुल कर दिए थे। ख्याल में आया भाई? हाँ अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि विहारवत स्वस्थान में तिरियनचोंग के क्षेत्र की प्रधानता नहीं है, यानी तिरियनचोंग में कितना क्षेत्र विहार करने वाले उसकी बात नहीं, मुख्यता देवों की होगी इसमें, किंतु देव क्षेत्र की ही प्रधानता है। क्योंकि प्रतरांगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण मुख्य रूप से अर्थात विष्कम्भ और उच्छेद रूप से विहार करने वाले देवों की संख्यात हजार योजन प्रमाण अवगाहना में घनफल रूप से संख्यात घनांगुल पाए जाते हैं, यानी उनके भी संख्यात घनांगुल हो जाते हैं देवों में। कैसे बताया कि उनके विष्कम्भ और उच्छेद कितना है, तो प्रतरांगुल का संख्यातवा भाग है, अंगुल का, ये प्रमाण अंगुल की बात चल रही है, प्रमाण अंगुल के संख्यातवे भाग रूप विष्कम्भ और उच्छेद, तो इसलिए प्रतरांगुल कहा दिया उन्होंने। क्षेत्रफल निकाले ने तो प्रतरांगुल, ऐसे विहार करने वाले देवों की संख्यात हजार योजन प्रमाण अवगाहना में, अब वो कितना दूर गए तो संख्यात हजार योजन, तो ये तीसरी डायमेंशन हुए, तो तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो भी घनफल कितना होगा, संख्यात घनांगुल, क्योंकि हजार विशिष्ट संख्यात हजारों से हमको हमने उसको गुणा किया है, असंख्यात हजार या असंख्यात योजनों से गुणा नहीं किया है, क्योंकि इतने दूर जाने वाले देव कम हैं, ये वो आगे बताएंगे। यहाँ तो एवरेज की बात बता रहे हैं, देवों का जो विस्तार है, चौड़ाई है, मोटाई है, या हाइट है और विड्थ है, विष्कम्भ है ना, विष्कम्भ और उच्छेद, और वो कितना दूर गए, आत्म प्रदेश कितने दूर तक फैले, कहाँ तक विहार किया, उसमें वो संख्यात हजार योजन लिए, तो तीनों का गुणा करेंगे तो भी संख्यात घनांगुल ही उसका उत्तर आएगा। इसलिए विहारवत स्वस्थान राशि को संख्यात घनांगुल रूप अवगाहना से गुणित करना चाहिए। पहले उन्हें विहार करने वाली राशि यानी कितनी संख्या है जीवों की, उसको इस घनफल से यानी संख्यात घनांगुल से गुणा करेंगे तो विहारवत का क्षेत्र मिलेगा हमको। यहाँ क्षेत्र की बातें चल रही है, संख्या तो हमने पहले उसमें देखी थी संख्या प्ररूपणा में, यहाँ क्षेत्र कितना है, तो एक जीव का इतना क्षेत्रफल, क्षेत्र उसका व्यापने वाला, क्षेत्रफल भी नहीं घनफल, वॉल्यूम, एक जीव का इतना है तो इतने जीवों का कितना, ये सिंपल त्रैराशिक होगा। इसमें एक जीव का हमने एवरेज निकाला संख्यात घनांगुल, तो विहार करने वाली जो राशि उसका कितना, इस तरह उसका उत्तर आएगा। शंका, असंख्यात योजन प्रमाण विहार करने वाले भी देव होते हैं, वो तो कहाँ कहाँ जाते हैं ना, नीचे नरक तक भी जाते हैं, तो उसका समाधान नहीं, क्योंकि असंख्यात योजन प्रमाण विहार करने वाले देव सर्व देव राशि के असंख्यातवे भाग मात्र है, अतः उनकी यहाँ पर प्रधानता नहीं है। इन जनरल सर्व सामान्य कितना विहार होता है तो संख्यात हजार योजन, ये असंख्यात वाले करने वाले है, उनमें कैपेसिटी भी है, कोई जीव जाते भी है, परंतु पूरी राशि के असंख्यातवे भाग प्रमाण देव ही उतना विहार करते हैं। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है, उसका समाधान, मिथ्या दृष्टि विहारवत स्वस्थान राशि तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है, इस प्रकार के व्याख्यान से उक्त बात जानी जाती है, यानी मिथ्या दृष्टि जो विहारवत स्वस्थान करने वाले जो जीवों की संख्या है वो कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग में रहते हैं, ऐसा जो सूत्र है, ये सब सूत्र आने वाले हैं और उसका उत्तर भी मिलेगा, तो उस सूत्र से यह जाना जाता है कि वो संख्यात हजार योजन ही उसका विहार होता है। फिर शंका, मिथ्या दृष्टि विहारवत स्वस्थान राशि के रहने का क्षेत्र तिर्यक लोक के संख्यात भाग मात्र कैसे है? मध्य लोक का संख्यातवा भाग ही आपने क्यों लिया? क्योंकि वो तो तिर्यंच राशि भी पूरी हुए है ना विहार करने वाली, तो उसका उत्तर बताते हैं। समाधान, अभी तिर्यक लोक का क्षेत्रफल वगैरह वो बताया नहीं। 1 लाख योजन में 7 का भाग देने से जितने सुचंगुल लब्ध आवे तत्प्रमाण बाहल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण तिर्यक लोक है। हमने कल ही देखा था तिर्यक लोक कितना है। हाँ, 1 लाख योजन उसकी हाइट है, उसकी विड्थ कितनी है भाई? हाँ, 1 राजू। हाँ, 1 राजू नहीं, कितने? 7 राजू बाय 1 राजू। पूर्व पश्चिम 1 राजू है और दक्षिण उत्तर 7 राजू है। ये समुद्र वगैरह तो यहाँ तक है, इसमें है बीच में, उसकी बात नहीं हो रही है। तिर्यक लोक यानी पूरा है और उसकी हाइट कितनी है? मेरु पर्वत जितनी, 1 लाख योजन। ये तो राजू में और ये योजन में है। तो तिर्यक लोक का घनफल कितना होगा? 1 राजू गुणा 7 राजू गुणा 1 लाख योजन। अब उन्होंने ये राजू गुणा राजू प्रतर राजू होता है, यदि हम 7 गुणा 7 करते तो जगत प्रतर हो जाता, बराबर। तो जगत प्रतर में हमको अगर गणित चाहिए तो इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 7 से डिवाइड यहाँ किए या यहाँ किए, एक ही बात है ना। ये 7 डिवाइडेड बाय 7, 1 के बदले हमने 7 डिवाइडेड बाय 7 लिखा और ये 7 यहाँ नहीं लिखकर यहाँ लिखा, क्योंकि गुणकार रूप राशि एक ही उसका फिगर होगा, इसलिए 7 गुणा 7 हमने जगत प्रतर कह दिया। जगत प्रतर गुणा 1 लाख योजन का 7वां भाग। अभी तिर्यक लोक का क्षेत्रफल घनफल यहाँ बता रहे पहले, अभी हम आगे बढ़े नहीं है। तिर्यक लोक का घनफल कितना है, जैसे हमने अधोलोक का निकाला, ऊर्ध्वलोक का निकाला, तिर्यक लोक का घनफल कितना है? 1 राजू गुणा 7 राजू गुणा 1 लाख योजन, उसका ये घनफल आता है। तो 1 राजू के बदले हमने 7 बाय 7 राजू लिखा, क्योंकि 7 राजू गुणा 7 राजू जगत प्रतर होता है, तो हमको जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लिखना है, तो हमने यहाँ जगत प्रतर लिखा। और ये 7 बाय 7 वाला जो 7 है वो 1 लाख के नीचे बताए, यानी हम 1 लाख के 7वां भाग कर देंगे। तो 1 लाख योजन का 7वां भाग से हम गुणा करेंगे। अब ये तो योजन में है, हम उसको अंगुलों में कहेंगे। तो मान लेते कुछ एक्स अंगुल आए, सुचंगुल एक्स, तो हमारा उत्तर कैसा होगा? इतने एक्स सुचंगुल से गुणित जगत प्रतर, जगत प्रतर को इतना गुणा करो, कितने गुणा? लाख योजन का 7वें भाग में जितने अंगुल है उतना गुणा करो, यानी संख्यात अंगुल है, संख्यात अंगुल, यानी जगत प्रतर को संख्यात सुचंगुल से गुणा करो तो तिर्यक लोक का घनफल होगा। ये बात अभी हमने पढ़ी थी, मैं फिर पढ़ती हूँ। देखो क्या है, 1 लाख योजन में 7 का भाग देने से, लाख में क्यों 7 का भाग दिया समझ में आया? क्योंकि वहाँ हमको 1 राजू बाय 7 राजू था ना, 1 राजू गुणा 7 राजू, वो हमको 7 राजू गुणा 7 राजू लेना था। 1 राजू को हमने 7 गुणा किया तो 7 बाय 7 लिखेंगे हम, 7 डिवाइडेड बाय 7, तो उत्तर आएगा। तो इसलिए 1 लाख, उतने इतने कम अर्धच्छेद नहीं है उसके, 1 राजू के पूरे पूरा मध्य लोक और लास्ट में अर्धच्छेद 2 वो तो अंतिम में वो 17 वगैरह कुछ आए थे ना, हाँ, मगर वो तो उन्होंने समझाया था, फिर निकाल के देखना कितने अर्धच्छेद आते हो। देखेंगे हम, इतना ही आया था कि वो अर्धच्छेद लवण समुद्र में अंतिम दो अर्धच्छेद पढ़ते उतनी बात आई थी। हाँ, देखो यहाँ क्या लिख रहे, देखो 100,000 योजन में 7 का भाग देने से जितने सुचंगुल लब्ध आवे, 100,000 डिवाइडेड बाय 7, ये तो योजन में आ गए। 100,000 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जितने योजन आएंगे उसको हमको अंगुल करने हैं, तो 7,68,000 से गुणा करना पड़ेगा। यानी हमारी अभी कैसी होगी, 100,000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7,68,000, इतने तो उच्छेद अंगुल आ जाएंगे, सुचंगुल कहेंगे हम इसको। और इसको प्रमाण अंगुल करने हैं तो 500 से भाग देना पड़ेगा। जितने सुचंगुल लब्ध आवे तत् प्रमाण बाहल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण तिर्यक लोक है, यानी इतने सुचंगुल को जगत प्रमाण जगत लोक से गुणा करो तो इतने तिर्यक लोक का घनफल है। इसे पूर्वोक्त विहारवत स्वस्थान रूप क्षेत्र से भाजित करने पर संख्यात रूप लब्ध आते हैं। ये पहले विहारवत क्षेत्र जो हमने निकाला था उसका भाग इसको दे देंगे, ये पूरे तिर्यक लोक के घनफल को, तो संख्यात उसका उत्तर आता है संख्यात में। इसीलिए तिर्यक लोक के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में मिथ्या दृष्टि विहारवत स्वस्थान राशि रहती है ऐसा कहा है। इसी को दोबारा फिर विशेषार्थ में बताते हैं। तिर्यक लोक पूर्व पश्चिम 1 राजू चौड़ा, उत्तर दक्षिण 7 राजू लंबा और 100,000 योजन ऊंचा है। हम हमेशा वो द्वीप समुद्रों में गिनते 1 राजू बाय 1 राजू, पूरी पृथ्वी 1 राजू बाय 7 राजू है, उसको लेना है। इसे जगत प्रतर रूप से करने के लिए, जगत प्रतर के लिए करना है ने क्या करना, 7 राजू गुणा 7 राजू करने के लिए। जगत प्रतर में हमको उत्तर चाहिए है ना, हमारा कैसा 1 राजू गुणा 7 राजू गुणा 100,000 योजन, उसके बदले हम जगत प्रतर करने के लिए 7 राजू गुणा 7 राजू करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो अपना उत्तर बराबर आएगा, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में 7 लिया नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे जगत प्रतर रूप से करने के लिए 100,000 योजन में 7 का भाग देना चाहिए। 7 राजू हमने लिया 1 राजू के बदले, इसलिए 100,000 में भी 7 का भाग दिया, क्योंकि तिर्यक लोक भी उत्तर दक्षिण 7 राजू तो है ही, किंतु पूर्व पश्चिम जो 1 राजू मात्र है उसे 7 राजू प्रमाण प्रकल्पित करने के लिए, प्रकल्पित नहीं कल्पित करने के लिए, मानने के लिए उच्छेद में 7 का भाग देने से, उच्छेद यानी वो हाइट तिर्यक लोक की जो 100,000 योजन प्रमाण है, तो वहां हमने 7 का भाग दिया, उच्छेद 100,000 योजन का 7वां भाग रह जाता है। नहीं, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 राजू से नहीं। देखो यहाँ तो 7 थे, यहाँ 1 था,
ये 7 है, लेकिन 7 राजू, और आप यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हो, वहाँ पे फिगर पत्थर बता देते हो, तो
जब फिगर्स ली है तो 7वां भाग लेना है ना। अभी जो कोई भी डिवीजन में हम डालेंगे, ये सभी मल्टीप्लिकेशन में फिगर्स है, डिवीजन में कुछ भी लिखेंगे हम तो सबका डिवीजन है ना, वो कहीं भी रख सकते हैं उसको, 7 के नीचे लिखो या 100,000 के नीचे लिखो, बराबर। तो 7 से हमने डिवाइड किया है, इसको 7 गुणा किया तो हाइट को 7वां भाग करना पड़ेगा, इतना ही लेना है उसमें, गणित में कुछ फर्क नहीं है। तो उत्सेद 1,00,000 योजन का सातवां भाग रह जाता है और पूर्व पश्चिम में 7 राज्यों प्रमाण क्षेत्र हो जाता है, यानी पूर्व पश्चिम हमने 7 गुणा किया और उसको सातवां भाग किया, तीनों की मल्टीप्लीकेशन वही आने वाली है, क्योंकि हमको जगत प्रतर कितने लेना उस हिसाब से यहाँ एडजस्टमेंट की है। इस प्रकार 1,00,000 योजन के सातवें भाग में जितने सूचंगुल होंगे, कितने सूचंगुल होंगे, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7,68,000, एक उत्सेद योजन में इतने उत्सेद अंगुल होते हैं। तत्प्रमाण बाहल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण तिर्यक लोक आ जाता है, इन इतने चौड़ाई वाला जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय इतने सूचंगुल, ये उसका घनफल होगा। एक योजन में 7,68,000 सूचंगुल होते हैं, इसलिए 1,00,000 योजन के सातवें भाग में, ये उन्होंने लंबा चौड़ा गणित समझाया, यानी 10,97,14,28,571 पूर्णांक 3/7 सूचंगुल होंगे। अतएव ये जो फिगर उन्होंने बताई, इतने सूचंगुल प्रमाण जगत प्रतर, क्योंकि ये तो उत्सेद बताया, इतने जगत प्रतर लेना, एक जगत प्रतर, दो जगत प्रतर, तीन जगत प्रतर, तो कितने जगत प्रतर लेना है, ये सूचंगुल प्रमाण जगत प्रतर लेना है, तिर्यक लोग जानना चाहिए। प्रतरांगुल के संख्यात्वे भाग का जगत प्रतर में भाग देने से त्रस पर्याप्त राशि का प्रमाण आता है। पहले हमने त्रस पर्याप्त राशि कितनी है, जगत प्रतर का संख्यात्वा भाग है, ऐसा देखा था पहले, और यहाँ क्षेत्र कितना है, जगत प्रतर से कुछ गुना है, सूचंगुल से गुणित किया हमने, और राशि कितनी है, उसका संख्यात्वा भाग है, और इसके संख्यात एक भाग प्रमाण विहारवत स्वस्थान राशि है। जितनी पूरी त्रस पर्याप्त राशि है वो पूरी विहारवत में नहीं लेना, उसका संख्यात्वा भाग विहारवत वाला है। विहारवत स्वस्थान राशि में एक जीव की मध्यम अवगाहना संख्यात गुणांगुल है, तो पूर्वोक्त राशि का कितना क्षेत्र होगा, एक जीव की इतनी संख्यात गुणांगुल, तो इतने जीवों की कितनी राशि होगी। इस प्रकार त्रैराशिक करने पर विहारवत स्वस्थान राशि का क्षेत्र संख्यात सूचंगुल गुणित जगत प्रतर प्रमाण आ जाता है, जो तिर्यक लोक के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। यानी वो संख्यात्वा भाग क्यों है, उसका ये लंबा चौड़ा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। विहार व स्वस्थान जीवों का क्षेत्र 2.5 द्वीप से असंख्यात गुणा है, क्योंकि 2.5 द्वीप में संख्यात प्रमाण घनांगुल ही देखे जाते हैं। ढाई द्वीप का कितना क्षेत्रफल होगा, घनफल 45,00,000 योजन, तो इसलिए उसको कहते हैं उसमें संख्यात प्रमाण घनांगुल देखे जाते हैं। और यह देखो विहारवध करनारे कहाँ तक है, वो स्वयंभू रमण तक सबको लिया था हमने, और देवों को भी लिया था, तो 2.5 द्वीप से कितना है, ऐसा उसके साथ कंपेयर करना, 2.5 द्वीप के क्षेत्रफल से कितना गुना है, तो उसे कहते असंख्यात गुना है। ये क्षेत्र का रेशियो हमें पता चले, इतनी बात इसमें, और कुछ नहीं। अब वैक्रेक समुद्घात को प्राप्त हुए मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, पहले स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान बताए, अब कह रहे वैक्रेक समुद्घात वाले मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, सर्वलोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में, एक उत्तर हो गया, या ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में, तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में, तथा 2.5 द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। एक ही बात को उन्होंने अलग अलग अपेक्षाओं से कितने गुणा है वो बताया। यहाँ पर अपवर्तना पहले के समान कर लेना चाहिए, इतनी विशेषता है कि वैक्रियक समुद्घात में सात धनुष उत्सेद रूप अवगाहना से युक्त ज्योतिष का देवराशि प्रधान है। ज्योतिष देवराशि उत्सेद यानी जो हाइट है उनकी, वो सात धनुष है, उनकी अपेक्षा से ये सब गणित होगा क्योंकि मुख्यता उनकी है, मेजॉरिटी ज्योतिषियों की है ना, हमने देखा था मैक्सिमम जीव तो ज्योतिषी वाले हैं। हाँ वो तो घूमते हैं उनके, इसलिए ज्योतिष देवों के संख्यात्वे भाग प्रमाण, वो भी हमने देखा था वैक्रिक समुदात, उसमें संख्यात्वे भाग करेंगे। अभी बिहारवत की बात नहीं चल रही, वैक्रिक समुदात वालों की बात चल रही, उनके विमान घूमते हैं, देव तो विक्रिया करके अन्यत्र भी जाएंगे। जैसे चंद्र और सूर्य विमान है, और वे इंद्र प्रतिंद्र तरीके से इसमें भी आते हैं ना समोशरण में, तो विक्रिया करके अन्यत्र भी चले जाते हैं, उसकी बात है। तो जितने देव राशि है उसके संख्यात्वे भाग प्रमाण देव ही वैक्रिक समुद्घात करेंगे। तो वैक्रिक समुद्घात युक्त राशि का क्षेत्र लाने के लिए संख्यात घनांगुल गुणकार स्थापित करना चाहिए, क्योंकि संख्यात हजार योजन प्रमाण विक्रिया करने वाले देव पाए जाते हैं। उनका उत्सेद है कितना, सात धनुष, और वो कितना दूर तक जाएंगे, संख्यात हजार योजन, यानी वो सब संख्यात हजार घनांगुल में, संख्यात घनांगुल में ही उसका सब उत्तर आ जाएगा। शंका, असंख्यात योजन क्षेत्र को रोककर विक्रिया करने वाले भी देव पाए जाते हैं, यानी इतनी बड़ी भी विक्रिया कर सकते हैं वे असंख्यात हजार योजनों की, तो उसका समाधान नहीं, क्योंकि असंख्यात योजन प्रमाण विक्रिया करने वाले देव सामान्य देवों के असंख्यात विभाग मात्र ही होते हैं, उनका प्रमाण बहुत अल्प है, कर नहीं सकते उसकी बात नहीं है, पर ऐसे करने वाले देव उनकी संख्या पूरे देव राशि का असंख्यात भाग प्रमाण ही है। कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि सभी देव अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र प्रमाण विक्रिया करते हैं, जहां तक वो अवधि ज्ञान से जानते हैं वहां तक विक्रिया कर सकते हैं, ऐसा कितने आचार्यों का कहना है, परंतु उनका यह कथन गठित नहीं होता है, क्योंकि वैक्रिक समुद्घात को प्राप्त हुई राशि तिर्यक लोक के संख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है, ऐसा व्याख्यान देखा जाता है। ये तो पहले भी हमने इस पर से घटित किया था। अब मिथ्या दृष्टि जीव राशि के शेष तीन विशेषण, अभी तक हमने कौन सा देखा, स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, फिर वैक्रिक समुदात, वेदना समुदात, कषाय समुदात, मानांतिक समुदात वगैरह, तो कौन से तीन उसमें नहीं पाए जाएंगे उसकी बात ये यहाँ बता रहे हैं। तो कहते हैं आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात और केवली समुद्घात संभव नहीं है, क्योंकि हमें मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके कारणभूत संयमादि गुणों का मिथ्या दृष्टि के अभाव है। वो संयम इन्हें बाह्य व्रत तप नहीं लेना, ये पहले भाग में आया था, वो उसको तो यम कहा है, संयम इन्हें सम्यक, जो सम्यक तो सहित जो होता है उसको संयम कहा है, समीचीन। तो संयम धारी जो है यानी संयत यानी भावलिंगी मुनि, उन्हें ही तेजस या आहार की ऐसी रिद्धियां प्राप्त होती है और उन्हें के ये समुद्घात हो सकता है। शंका, स्वस्थान आदि सात विशेषण सूत्र में नहीं कहे गए हैं, फिर भी वे मिथ्या दृष्टि जीव के पाए जाते हैं, यह कैसे जाना जाता है? तो यहाँ तो लिखा ये तीन नहीं होते, परंतु बाकी सात होते हैं ऐसा भी स्पष्ट शब्द से कहाँ लिखा है? उसका समाधान, मिथ्या दृष्टि जीव के स्वस्थान आदि सात विशेषण पाए जाते हैं, यह बात आचार्य परंपरा से आए हुए उपदेश से जानी जाती है। ये सात कौन से, कौन गिनाएगा? मंजू बेन आपको पता है सात विशेषण? हाँ, वेदना, कषाय, मारणाति समुद्घात, और एक समुद्घात रहेगा ना, वैक्रिक समुद्घात, हाँ, स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत, और कौन सा रहेगा भाई? उपोपाद उपवाद की बात है ना, जन्मने के उत्पन्न होने के पहले समय में वो विग्रह गति से जाने वाले वगैरह, कल हमने जो चर्चा की थी वो सात विशेषण उसकी बात है। कब कितना क्षेत्र व्याप्ता है उसकी बात चलती है, उसकी अपेक्षा ये सात बातें बताई। तो ये जो सात विशेषण पाए जाते हैं, यह बात जो है वो आचार्य परंपरा से जो उपदेश चला आया है उसके अनुसार हमने जाना है। दूसरी बात यह है कि सूत्र में आए हुए मिथ्या दृष्टि सामान्य वचन से स्वस्थान आदि सात विशेषण भी मिथ्या दृष्टि के विशेष है यह सूचित हो ही जाता है, क्योंकि इनको छोड़कर मिथ्या दृष्टि जीव नहीं पाए जाते हैं। तो उनको मिथ्या दृष्टि जीव है तो उनको कोई ना कोई क्षेत्र भी होगा, रहने का ठिकाना भी होगा, जिसको हम स्वस्थान स्वस्थान कहेंगे आदि आदि, जो सब जो कुछ चीजें हैं। इसी प्रकार घनलोक के अतिरिक्त ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तिर्यक लोक और अढ़ाई द्वीप संबंधी लोक, ये चार लोक भी सूत्र से सूचित हो ही जाते हैं। यानी वहाँ लोक के इतना भाग ऐसा कहे, परंतु लोक में ही अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक है, तो सूत्र में लोक का इतना भाग कहेंगे तो उसमें ये चारों भेदों में हम उसको लगा सकते हैं। वो मनुष्य लोक का कितने गुणा है या तिर्यक लोक का कितना भाग है, ये जो अभी हमने पढ़ा था इसमें, क्योंकि घनलोक से पृथक उपर्युक्त शेष चार लोक नहीं पाए जाते। यानी घनलोक के अलावा ये चार लोक कहाँ है, उसी के तो भेद है। इसलिए स्वस्थान स्वस्थान राशि आदि का व्याख्यान सूत्र से संबद्ध ही है। यानी सूत्र में जो कथन कर आए हैं उसी के अनुसार है, कोई अलग अपने मन से बात नहीं है। अब अगला सूत्र पढ़ते हैं। ये मिथ्या दृष्टियों की बात हो गई। अब शासन सम्माइठी पौड़ी जाव अजागी हो गया, अजोगी। जाव अजोगी केवलित्ति केवड़ी खेते, तो कहते लोगस असंख्य जदि भाए। लोग के असंख्यात भाग में रहते हैं, बराबर है। कहाँ से कहाँ तक? दूसरे गुणस्थान से 14वें तक। तो केवली समुद्घात वाले को कहाँ छोड़ना? हाँ, यहाँ क्या लिखा है? लोग के असंख्य यदि भागे, तो इसमें संयोग केवली को छोड़कर बात करेंगे। ख्याल है? संयोग केवलियों में जो केवली समुदाय करते हैं वे तो पूरा लोक व्याप करते हैं, तो उनको छोड़कर अन्य की जो बात हो रही उसकी बात चल रही है। देखो यहाँ पढ़ेंगे, सांसाधन समय दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान के जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। यद्यपि व्यवस्थावाची प्रवृत्ति शब्द के बल से सभी गुणस्थानों का संग्रह संभव है, तो भी, यानी यहाँ से यहाँ तक कह दिया ना, दूसरे से 14वें तक कह दिया, फिर भी यहाँ पर सहयोगी केवली गुणस्थान का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे कहा जाने वाला इसका बाधक सूत्र देखा जाता है। सहयोगी का अन्य सूत्र बताएंगे तो उसमें तो लोक के पूरे भाग में कह देंगे। तो कहते हैं स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात रूप से परिणत हुए सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, किसको नहीं लिया इसमें और किसको नहीं लिया? क्यों लिया और किसको नहीं लिया? और मारणांतिक को लिया? मारणांतिक को नहीं लिया, उपपाद को नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? ये तीसरे की भी बात उसी के साथ हो रही है, क्योंकि दूसरा तीसरा चौथा एक साथ बताना है ना उनको। देखो ना यहाँ सासादन सम्यक मिथ्यात्व और असंयत जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में, ऊर्ध्वलोक आदि तीन लोकों के असंख्यात भाग क्षेत्र में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। तो खाली दूसरे तीसरे चौथे को ही क्यों लिया, पांचवे को क्यों नहीं लिया? हाँ हाँ, तो पांचवे वाले मनुष्य तीरंचों की बातें करेंगे हम। दूसरे तीसरे चौथे तो ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक सभी सर्वत्र पाए जाते, फिर इसलिए उसकी बात की। तो उनकी बात की तो उसमें उपपाद और मारणांतिक को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो सम्यक मिथ्यात्व को भी साथ में बताया है। कोई भी रूल बताते हैं तो इन तीनों में कॉमन जितने हैं उतने बताएंगे ना, उसके बाद में करेंगे दूसरे की और चौथे की मारणांतिक की। तो कहते यह कैसे, उन्होंने क्या बताया, ये कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो पूरे लोक की बात करेंगे तो असंख्यात विभाग में, पूरे लोक के असंख्यात विभाग में, ऊर्ध्व लोक के असंख्यात विभाग में, या अधोलोक के भी असंख्यात विभाग में, तिर्यक लोक के भी असंख्यात विभाग में, और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में। तो ये कैसा, उसको भी समझाना पड़ेगा उसका समाधान। इन तीन गुणस्थानों में सौधर्म और ऐशान कल्प संबंधी देवराशि प्रधान है। हमने वो पीतलेशा वाले प्रकरण में भी देखा था, उसमें ये प्रधानता किसकी है उसकी, या अवधि ज्ञानियों में उसमें देखा होगा, सुअवधि में इनको देखा था बीच में एकदम। तो सौधर्म, क्योंकि बाकी तो उसमें साधिक में आ जाती राशि, तो इनकी मेजोरिटी है। उनकी अवगाहना सात हाथ उत्सेद रूप है, और अंगुल की अपेक्षा गणना करने पर, अभी हाथों को पहले हमने योजनों के अंगुल बनाए थे, अभी हाथ के भी अंगुल बनाने पड़ेंगे, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? हाँ, एक हाथ इज इक्वल टू 24 अंगुल। कल हमने देखा था ना, छह अंगुल का एक पाद, दो पाद का एक वीक, वीक के विलस्ती, दो पाद की एक विलस्ती और दो विलस्ती का एक हाथ, यानी एक हाथ इज इक्वल टू 24 अंगुल। तो अंगुल की अपेक्षा गणना करने पर 168 अंगुल प्रमाण होते हैं। सात हाथ, सात गुणा 24, 168 आ गए। इसके दसवें भाग प्रमाण उस अवगाहना का विष्कम्भ है, यानी उनकी हाइट सात हाथ है तो उनकी विड्थ कितनी होगी? हाँ हाँ, उसका दसवां 168 है, 16.8 अंगुल। तो कहते हैं यहाँ पर उत्सेद के दसवें भाग प्रमाण विष्कम्भ क्यों लिया, तो उसको बात कहते हैं, क्योंकि देव मनुष्य और नारकियों का उत्सेद 10, 9 और 8 ताल के प्रमाण से कहा गया है। यानी देवों का उत्सेद है वो दसवां भाग, मनुष्यों का है वो नौवां भाग, और नारकियों का आठवां भाग होगा। ताल यानी पाम। उत्सेद कितना होता है तो इससे कितना गुना है, ऐसा लेना उसको। ताल पाम ऑफ अ हैंड, या वीत भी कहते हैं हम कहते नहीं, वीत में हम जिसको हम कहते हैं इसे वेद, क्या कहते हैं उस, वेद कहते हैं हाँ गुजराती में। हम नापते हैं ना कितने गुना है, अपने हाथ से अपना प्रमाण नापो कितने गुना है। नहीं नहीं, ये अभी वो तो क्या ऐसा कहीं लिखा नहीं है ताल का माप, ये तो डिक्शनरी में उसका जो अर्थ है वो पाम ऑफ अ हैंड ऐसा कहते हैं, परंतु हम बचपन में तो हम मापते थे कितने बीत है। मराठी में ऐसा है ना, कौन से स्टैंडर्ड में कहो आप हो, ऐसा पूछने के लिए आप कितने थे, तो हम ये कितने बीत है वो बताते थे। तो यहाँ पर उत्सेद के दसवें भाग प्रमाण विष्कम्भ लिया है, यानी देवों में दसवां भाग जो है उत्सेद का दसवां भाग वो उसकी विष्कम्भ यानी चौड़ाई है, मोटाई। पुनः व्यास के आधे का वर्ग करके और उसे दूना करके अनंतर 168 उच्छेद के अंगुलों से गुणित करके 500 अंगुलों के घन से अपवर्तित करने पर प्रमाण घनांगुल का संख्यात्वा भाग लब्ध आता है। एक एक जीव का उन्होंने बताया, क्या कहते हैं? हाँ, प्रमाण घनांगुल में निकाला उन्होंने, पहले बताया तो सादे अंगुलों में और उसका उत्तर प्रमाण घनांगुल में निकाला है। तो कैसा निकालना है, अवगाहना कैसे निकालनी है एक जीव की? हाइट गुना विड्थ, विष्कम्भ की उसके वो परी ही निकाले ना पहले, जैसे कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है विष्कम्भ बताया तो उसकी परी ही निकालेंगे, फिर उसकी हाइट है उसको गुणा करेंगे उसका, ये तो गोल का निकलेगा पहले और फिर उसके हाइट से गुणा करेंगे। तो इसको कहते हैं व्यास के आधे का वर्ग करना। हाँ? आगे, हाँ, प्रमाणांगुल कितने हुआ आगे करके बताया उन्होंने। देखो 68/10 विष्कम्भ आया था, 168/10 विष्कम्भ है क्या? हाँ, क्यों? हाँ हाँ, ये भागीले चिन्ह है, उसका आधा करना है, बराबर है। उस 60 पेज पर वो हमने उसका, हाँ लास्ट में दे, मैंने पहले वाला देखा था, पहले भी एक शुद्धि पत्रक है, ये पीछे वाला मैंने नहीं देखा। हाँ पहले वाले तो एकदम 60 पेज पर ही शुद्धि पत्र शुद्धि वाली है अभी बात, ये वाली बात मैंने शुद्धि की देखी नहीं थी टेढ़ा। हाँ हाँ ये सब अपने अपने पहले कर लेना चाहिए उच्छेद के आयाम के, 34 पृष्ठ पर भी था कुछ उच्छेद के और आयाम के, बाद में देखेंगे उसको। ये जो भागीला चिन्ह है ना इसका, उसका आधा करना है, उसको मल्टीप्लाई साइन कर देना है उसके। 41 पृष्ठ पर भी वो करेक्शन भी बराबर नहीं किया है, वो स्क्वायर वो उसके बाद बाहर चाहिए, क्योंकि कल मैंने बहुत बार ऐसा सुलझा के देखा जैसा है वैसा उत्तर ही नहीं आ रहा था, फिर भी पता चला कि वो पूरे को काउंस करके उसको ब्रैकेट करके बाद में स्क्वायर करना है अगले पृष्ठ पर। इतने प्रमाणांगुल हुए, फर्स्ट लाइन में जो लिखा है ना 168 का स्क्वायर बाय 20 लिखा है, तो 168/20 करके बाद में स्क्वायर करना है, यानी जो करेक्शन उन्होंने बताया है वहाँ पर भी भूल है। ये अपने अपने पुस्तक में जो करेक्शंस है वो अपने पुस्तक में कर लो, एक दिन बैठ कर जो पहले भी शुद्धि पत्रक बताया बाद में भी ये जो शुद्धि पत्र लिखा है। हाँ क्योंकि बाद तो इसमें अपना टाइम भी नहीं जाएगा और अपने तकलीफ भी नहीं होगी, ये तो मैंने बिना देखे ही वो सुलझाए लग नहीं रहा था, फिर उसको इस तरीके से देखा तो पहले ब्रैकेट करके बाद में उसका स्क्वायर करना है। मुझे जरा एक, हाँ नहीं इसी पृष्ठ पर ये संख्या भी नहीं आती है, जो उन्होंने उत्तर दिया है वो भी गलत है, ये वाला जो निकाला है अंकगणित। आगे के हम कौन सा बता रहे हैं, वो 41 तो अभी हमने देखा। हाँ 41 पर 41 पर ही तीन है। पूर्वोक्त गुणकार गुणित, हाँ ये पूर्वोक्त लोक के भाजित करने पर ना, यही की बात बता रहे हैं ना। पूर्वोक्त गुणकार गुणित अवगाहना गुणित राशि से, ये बाद में ही कर लेंगे हम, अभी पढ़ेंगे। गुणकार गुणित क्या है, अवगाहना गुणित राशि से। हाँ हाँ ऊपर से 20वीं लेनी है। गुणित राशि से इन राशियों से नीचे से 8वीं लाइन में राइट साइड में जो गुणकारों से वो राशियों से करना, और नीचे से 10वीं लाइन में जो अभी हमने देखा वो। अभी ये कल सभी करेक्शंस करके लाना अंत तक जितने भी है वो। हाँ वो तो लाने कभी तो करना ही है, यहाँ बैठ के करो, हमारे कोई हमें तकलीफ नहीं है। हाँ नहीं वो तो अभी आगे देखेंगे, अभी अपना इतना ही पढ़ना है उसको ले लेते पहले, आगे की बात हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ हम आए हैं एक देव की पहले अवगाहना निकाली है तो उनका उच्छेद होता है 7 हाथ। तो 7 हाथ के उन्होंने अंगुल किए तो 168 अंगुल आ गए। अभी हमको उनका विषकम्भ निकालना है तो डिवाइडेड बाय 10, अभी उसको कहते हैं व्यास के आधे का वर्ग करके, व्यास हो गया 168/10, उसका आधा हो गया 168/20, उसका वर्ग करके उसे दुना करने पर, पहले वर्ग करो बाद में दुगुना करो मल्टीप्लाइड बाय 2, अनंतर 168 उच्छेद के अंगुलों से गुणित करके, क्योंकि 168 हाइट है इसलिए उससे गुणित करना है। फिर अभी इसके प्रमाण अंगुल बनाने के लिए, प्रमाण एकदम उनके घन अंगुल ही बना रहे वो, क्योंकि हमने हाइट विड्थ वो सब लिए है तो वो भी घन अंगुल में बात आई, इसलिए प्रमाण अंगुल बनाने के लिए 500 के घन से उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 500 का घन, 500 अंगुलों के घन से अपवर्तित करने पर प्रमाण घनांगुल का संख्यात्वा भाग लब्ध आता है, बराबर। अब इससे जो लब्ध आएगा ये कहाँ आएगा, वो अगले पेज पर आया है कैसा निकाला है। इससे सासादन समय दृष्टि आदि तीन गुण स्थानों की स्वस्थान स्वस्थान आदि राशियां, यानी जो जीवों की संख्या जो कि सासादन समय दृष्टि आदि ओघ राशि के उत्तरोत्तर संख्यात्व भाग प्रमाण है, उन्हें गुणित करने पर तीन गुण स्थानों की स्वस्थान स्वस्थान आदि राशियों के क्षेत्र हो जाते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर संख्यात्व भाग गुणायने क्या है, हमने अभी कौन कौन सी बातें देखी थी। देखो पहले ले दिया स्वस्थान स्वस्थान अंतिम पेज पर जो हमने पढ़ा था 39 पर, दूसरे नंबर पर विहारवत स्वस्थान स्वस्थान के संख्यातवे भाग विहारवत हुए, उसके संख्यातवे भाग वेदना वाले हैं, फिर कषाय वाले हैं, वैक्रिक वाले हैं, इसलिए उत्तरोत्तर संख्यातवे भाग कहा। उन्हें गुणित करने पर जो जो अपनी अपनी राशि होगी उससे ये जो अभी हमने संख्यात घनांगुल प्रमाण घनांगुल जो बात निकाली है उससे गुणा करेंगे तो तीन गुणस्थानों की स्वस्थान स्वस्थान आदि राशियों के क्षेत्र हो जाते हैं, उनकी स्वस्थान के क्षेत्र, विहारवत का क्षेत्र आदि आदि। इसी का विशेषार्थ फिर दोबारा बताते हैं। यहाँ स्वस्थान आदि पद परिणत सासादनादि तीन गुणस्थानवर्ती जीवों के अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहने की उपपत्ति बतलाई गई है। उपपत्ति ने वो डिराइव करके निकाला है, ये ढाई द्वीप से असंख्यात गुणा है और हमने वो लोक से असंख्यात वे भाग ऐसा कहा था। प्रकृत में सौधर्म ऐशान देवराशि प्रधान है, उनकी मेजॉरिटी है, तो उनकी अपेक्षा से हाइट उनकी वीर्थ वगैरह निकालेंगे। इन स्वर्गों के एक देव की अवगाहना सात हाथ यानी 168 उच्छेद अंगुल है, वो उनकी ऊंची है, ऊंचाई है, उनकी अवगाहना इतनी ऊंची है तथा इसके दशमांश विष्कम्भ रूप होती है। विष्कम्भ ने मान लेते हम ऐसा गोलाकार लेते, उसका डायमीटर कितना होगा, उसका दसवा भाग यानी 168 डिवाइडेड बाय 10। तदनुसार एक देव की अवगाहना का घनफल इस प्रकार आता है। तो कैसे आता है, तो उच्छेद 168 अंगुल, विष्कम्भ 168 बाय 10 अंगुल। तो 168 को 10 से भाग दिया, उसका आधा करके फिर वर्ग किया, गुणा 2 और गुणा 168, एक देव की अवगाहना के उच्छेद घनांगुल हो गए। इसके प्रमाणांगुल इतने होते हैं, तो प्रमाण यही जो फिगर है उसको 500 से डिवाइड किया, 500 के घन से डिवाइड किया। तो ये तो जो कुछ नीचे की राशि तो ठीक है, ये जो आती है देखो, हाँ देखो 500 का घन कितना होगा, देखो मुझे भी गलत ही लगा था, 500 है, 2 जीरो है, उसको घन करने के लिए 6 जीरो लेंगे और 125 आएंगे, और यहाँ जो 20 का घन वर्ग कितना होगा, 400, इसको मल्टीप्लाइड बाय 400 करो, तो इसके ऊपर और 2 जीरो बता दो और इसको 125 को 4 गुणा करो, 500 हो जाएगी, तो ये फिगर आती है, ये बराबर है। गिनो अभी, 5 बार 10 जीरो, यानी 5000 करोड़ नीचे, और ऊपर किस किस को लिया, 168 का वर्ग यानी 168 का घन करो और दुगुना करो, तो ऊपर की जो फिगर है 9483264 और नीचे है 5000 करोड़ करना, ये दोनों फिगर यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके आगे वाली जो उन्होंने निकाली है उसमें गड़बड़ी है। कल तो मेरा 2 घंटा तो इसी में चला गया, पहले ये 5000 करोड़ कहाँ से आए वो ही पता नहीं चला, फिर लगा कि तो ऊपर जो 20 लिखा है ना, क्योंकि मैं तो इसको 20 से गुणा कर रही थी, क्योंकि वो पहले ब्रैकेट करके बाद में स्क्वायर करना था, तो मैं डायरेक्ट 20 से गुणा कर रही थी, तो 125 से 2 गुणा करें तो 250 आ जाएगा, तो यहाँ 400 से गुणा करना है। तो अभी ये जो भाग दिया है तो ऊपर भी उन्होंने 1024 से भाग दिया है, उल्टा करके देखो ना, कैलकुलेटर ले लो और 9483264 को 9261 से डिवाइड करो तो 1024 आता है, या 16 16 से भाग देते रहो, 16 का गण है ना ये, कितना है, नहीं 16 का गण ये नहीं है, 10 से 24, 16 गुना 16 गुना 64 ऐसा आता है वो। तो 9261 आया ऊपर, और नीचे उसी से भाग देंगे तो 4882 8125 इतनी संख्या आती है। हाँ 4882 8125 यानी 488,28,125 4 करोड़ 88,28,125 क्योंकि देखो ना यहाँ तो 10 डिजिट गया, 11 डिजिट्स है, और यहाँ इतनी छोटी संख्या कैसे आ सकती है। हाँ मैंने किया एक्चुअल, करने की क्या जरूरत है, यहाँ गलत है वो तो सही है कि नहीं वो तो पता चल। हाँ हाँ उन्होंने क्यों किया, हाँ हाँ ये संख्या तो भाग है बस, यानी पूरा सुलझाने की जरूरत नहीं थी ये कहना है। हाँ ये उसका संख्या तो भाग है क्योंकि अपूर्णांक में आया है, यानी पूरा एक भी नहीं है, यानी संख्या तो भाग ये सिद्ध हुआ। यह राशि प्रमाण घनांगुल के संख्यात्व भाग हुई, एक घनांगुल भी पूरी नहीं है ना, उसका संख्यात्व भाग हुई। इसे सौधर्म ईशान स्वर्गों की सासाधनादि तीन गुणस्थानवर्ती राशियों से गुणा करने पर तीनों गुणस्थानों के स्वस्थानादि पदों के क्षेत्रों का प्रमाण आता है। जितनी राशियां होगी सासाधन की, जितनी संख्या उससे गुणा करेंगे तो उनकी राशि आ जाएगी। जो तीनों लोकों के असंख्यात्व भाग तथा अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणा होता है, जो क्षेत्र आएगा वो कितना है, तो पूरे लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण या ढाई द्वीप के साथ कंपेयर करो तो असंख्यात गुणा होता है। हाँ उसी सूत्र से लेना। हाँ इतनी विशेषता है। हाँ वो करने वाले जीव कम हो गए ना। हाँ वो देव जाते हैं, परंतु कितने देव जाते हैं उसकी बात है। देखिए स्वस्थान में रहने वाले देव ज्यादा हो गए क्या, विहार करने वाले ज्यादा हो गए, ये बात है। ये उनकी वो सब उसकी अपेक्षा से, स्वस्थान वाले मेजोरिटी है, विहार करने वाले उनसे कम है, वेदना समुदाय वाले कम है, उससे कषाय वाले कम है, उससे वो वैकृत समुदाय करने वाले कम है, ऐसे लेना है। तो नेचुरली संख्या कम है तो क्षेत्र कम, क्योंकि हर एक संख्या को हम उस जीव के अवगाहना से गुणा करने वाले हैं। हाँ जो कुछ है हाँ। देखो इतनी विशेषता है कि वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात का क्षेत्र लाने के लिए, अब यहाँ हमने कितना विहार करते उसकी अपेक्षा से विहार से उससे गुणा किया था, अब कषाय और वेदना के बारे में मूल अवगाहना को 9 से गुणित करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था तिगुना बढ़ता है, तो तिगुना ऐसा तिगुना और ऐसा भी तिगुना बढ़ेगा ना, 3 गुना 3 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि वेदना और कषाय समुद्घात में उत्कृष्ट रूप से शरीर से तिगुना विस्तार पाया जाता है। विहार व स्वस्थान और वैकृत समुद्घात का क्षेत्र लाने के लिए संख्यात घनांगुल गुणकार होते हैं। विहार कहाँ करके जाते हैं, ये आपका प्रश्न था ना, संख्यात हजार चले जाएंगे तो उनका क्षेत्र में उससे इतने गुणा करना पड़ेगा, अथवा वेदना समुद्घात आदि के द्वारा शरीर से तिगुने समुद्घात को करने वाले जीव स्वल्प है। इतना हर एक का मैक्सिमम समुद्घात होगा ऐसी बात नहीं, 9 गुना करने वाले बहुत अल्प हो गए यानी तिगुना, और कोई जीव ऐसे होते हो मिनिमम तो एक प्रदेश ही बढ़ गया, तो मिनिमम से मैक्सिमम तक उसका फिर एवरेज निकालेंगे। इसलिए मध्यम गुणकार 9 के आधे रूप अर्थात 4.5 होता है, तो 4.5 गुणा करेंगे हम उसको तो एवरेज होगा। इन पूर्वोक्त गुणकार गुणित अवगाहना से गुणित राशि से, ये अभी हमने करेक्शन किया था यहाँ, लोक के भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे विरलित करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति लोक को समान खंड करके देय रूप से दे देने पर प्रत्येक विरलन के प्रति जो एक भाग प्राप्त होता है उतना इन राशियों से रुद्ध क्षेत्र होता है। ये राशियां कितना क्षेत्र व्याप्ती है, रुद्ध ने व्याप्ती है, हम कहते ना अवरुद्ध रुद्ध, तो ये राशियों का क्षेत्र कितना है तो उसका प्रमाण मिलता है। क्या किया, ये जो राशियां है अवगाहना से गुणित अपनी अपनी राशि, अवगाहना से गुणित अपनी अपनी राशि, हाँ, और वो राशि से हमने लोक को भाग दिया, जो संख्या आई उसको विरलन किया, विरलन के एक के प्रति लोक के उतने भाग करके दे दिया, तो एक एक भाग में कितना होगा वही जो संख्या आने वाली है। ये विरलन वाली मेथड हमने बहुत बार देखी थी पहले, हाँ। तीन राजू बाहल्य से युक्त जगत प्रतर प्रमाण ऊर्ध्वलोक है, ये हमने कल निकाला था। अधोलोक के लिए कितना बाहल्य देखा था, चार राजू, और ऊपर ऊर्ध्वलोक के लिए तीन राजू। यहां पर भी अपवर्तना पहले के समान करनी चाहिए। चार राजू मोटा और जगत प्रतर प्रमाण लंबा चौड़ा अधोलोक है, यानी ऊर्ध्वलोक के कितने भाग, तो वहां ये प्रमाण निकालना। अधोलोक के कितने भाग प्रमाण है, उसके लिए अधोलोक का जो घनफल है चार राजू बाय सात राजू बाय सात राजू, गुणा गुणा। यहाँ पर भी पूर्व के समान अपवर्तना करनी चाहिए। एक लाख योजन में अभी तिर्यक लोक से हमको प्रमाण निकालना है, तो एक लाख योजन में सात का भाग देने से जितना लब्ध आवे उतना मोटा और जगत प्रतर प्रमाण लंबा चौड़ा तिर्यक लोक है, ये हमने क्यों उसका भी अभी विस्तार से देखा था। यहाँ पर भी अपवर्तना पहले के समान करनी चाहिए। अपवर्तन है भागाकार, उसका कितवा भाग है ये हमको जानना है। हमको पूरा क्षेत्र मालूम है, अभी ये जो विहारवत या स्वस्थान वगैरह क्षेत्र निकाले उसको हम भाग देंगे तो लोक का असंख्यात्वा भाग है या ऊर्ध्वलोक का असंख्यात्वा भाग है या नीचे अधोलोक का असंख्यात्वा भाग है, वो हमको प्रोपोर्शन मिल जाएगा। यहाँ तिर्यक लोक का प्रमाण लाने पर विष्कम्भ और आयाम से एक राजू प्रमाण ही है, अतः घनलोक ऊर्ध्वलोक और अधोलोक इन तीन लोकों के असंख्यात्वा भाग प्रमाण क्षेत्र में तिर्यक लोक है। ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, वो तो एक बार राजू गुणा एक राजू मानते, परंतु उनका यह इस प्रकार का कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि इस कथन का पूर्व में स्वीकार गए कथन के साथ विरोध आता है। वह पहले स्वीकार गया कथन कौन सा है, तो चार राजू मोटा जगत प्रतर प्रमाण लंबा चौड़ा अधोलोक है, तीन राजू मोटा और जगत प्रतर प्रमाण लंबा चौड़ा ऊर्ध्वलोक है, और सात राजू मोटा और जगत प्रतर प्रमाण लंबा चौड़ा सर्वलोक है, यही वह पूर्व स्वीकार किया गया कथन है। पहले हमने वो मृदुंगाकार वगैरह अन्य अन्य जो मत है वो सबको रूल आउट किया था। अब मनुष्य लोक कितना है उसकी बात बता रहे हैं। 45 लाख योजन विष्कम्भ, विष्कम्भ यानी डायमीटर, और 1 लाख योजन ऊंचा मानुष लोक है। अब मानुष लोक के लिए ढाई द्वीप वाला जो है ना, तो 45 लाख योजन और 1 लाख ऊंचा, पुनः पूर्वोक्त गुणकार रूप क्षेत्र संबंधी विष्कम्भ और उच्छेद के अंगुल करके ये जो गाथा हमको उसको पढ़ेंगे। व्यासम षोडश गुणितम षोडश सहितम त्रिरूप रूपैर भक्तम व्यास त्रिगुण सहितम सूक्ष्मादपि तद्भवेत् सूक्ष्मम्। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म परिघि निकालने के लिए ये सूत्र है। बहुत स्थूल कथन में हमने तिगुनी परिधि होती है ऐसा कह दिया, उसके बाद वो हमें पाए से गुणा करते ना या 10 के वर्गमूल से, वो और थोड़ा सूक्ष्म हुआ। और ये सूक्ष्म से सूक्ष्म कथन है, हम पढ़ेंगे नीचे उसका अर्थ क्या। व्यास को 16 से गुणा करें, पुनः 16 जोड़े, पुनः 3, 1 और 1 हमेशा अंक राइट से लेफ्ट के तरफ पढ़े जाते हैं। 3, 1 और 1 यानी 113। 3, 1 और 1 अर्थात 113 का भाग देवे और व्यास का तिगुणा जोड़ देवे तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परिधि का प्रमाण होता है। ये सरकमफरेंस निकालने की बात है, परिधि विशेषार्थ। यहाँ पर मंडलाकार क्षेत्र की परिधि का प्रमाण लाने की प्रक्रिया बतलाई गई है। मंडलाकार यानी गोलाकार, गोल कोई क्षेत्र है, अभी इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है और हमको ये मालूम है इसका डायमीटर मालूम है, तो क्या करना, डायमीटर को 16 से गुणा करना, फिर उसमें 16 मिला देना, उसको 113 से भाग देना और डायमीटर का तिगुना उसमें मिला देना, ये उसकी परिधि यानी सरकमफरेंस आता है। देखो विशेषार्थ, सेकंड लाइन, स्थूल मान से तो, स्थूल मान यानी स्थूल माप से तो, मान यानी वो क्रोध मान वाला मान नहीं, मान यानी मेजरमेंट, स्थूल मान से तो परिधि का विस्तार व्यास से तिगुना ले लिया जाता है। ये तो बहुत स्थूल कथन है। यथा वासो तिगुणों परिहि, ऐसा जो त्रिलोक सार में सूत्र दिया है, वासो यानी व्यास, व्यास के तिगुना परिधि होती है। इससे भी सूक्ष्म प्रमाण 10 का वर्गमूल बतलाया गया है, यानी व्यास को 10 के वर्गमूल से गुणा करना। 9 का वर्गमूल 3 आता है और आगे थोड़ा कुछ अपूर्णांक जो हम वो पाए कहते ना 22 सप्तमोश। हाँ। यथा विखंब वग्घ दह गुण करणी वट्टस्स परिरवो होदी, ये 96 नंबर का त्रिलोकसार का सूत्र है। किंतु प्रस्तुत गाथा में इस सूक्ष्म प्रमाण से भी सूक्ष्मतर प्रमाण निकालने की प्रक्रिया बतलाई गई है जो इस प्रकार है, यानी 3 प्रकार से परिधि निकालने का तरीका बताया। 1 राजू व्यास के वृत्त क्षेत्र यानी गोलाकार क्षेत्र की परिधि का प्रमाण इस प्रकार से होगा, तो 1 राजू को उन्होंने 16 से गुणा किया, उसी में 16 मिलाए डिवाइडेड बाय 113, उसमें 1 × 3 यानी तिगुणा किया व्यास को, वो मिला दिया तो 371/113 आ गए, यानी 3 × 32/113 राजू, ये प्रमाण आया। ये कुछ फिगर आपको फैमिलियर लगती है, हाँ कहाँ देखी थी इसको, 371/113, हाँ अधोलेख का जो हमने घनफल निकाला था तो बीच की जो है ना दंडाकृति, 1 राजू वाला वृत्ताकार वो नीचे तक 7 राजू वाला, उसका घनफल पहले निकाल के अलग रखा था, तो उसका वो फैलाया था हमने, नीचे से कट कर फैलाया था सुरपाकार, तो उसके तो ऊपर को जो बीच का आयत निकाला था उसकी चौड़ाई निकाली थी। 1 राजू व्यास का विष ये परिघि वही यहाँ बताइए, और तब हमने ये पेज निकाल कर देखा भी था। अब 7 राजू का निकाल के बता रहे। उसी प्रकार 7 राजू वृत्त क्षेत्र की परिधि का प्रमाण इस प्रकार होगा। अब 1 के बदले में यहाँ 7 करना, यानी 7 × 16 + 16, उसको 113 से भाग देना और उसमें 7 × 21 मिला देना, तो 2501/ यानी डिवाइडेड बाय 113 यानी 22.15 113 राजू उसका उत्तर आता है। ये खाली गोल का आया, परिघि आई, परिधि आई, क्षेत्रफल नहीं आया है। इस सूत्र के नियमानुसार परिधि करके यानी पहले परिधि लाना, फिर व्यास के चौथे भाग से गुणित करने पर प्रतरांगुल हो जाते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? हाँ अरविंद भाई, नहीं समझे? आप हेल्प करो जरा, आप भी नहीं समझे। देखो क्या करते हैं, हमें पहले क्या परिधि मालूम है? हाँ वो पाईडी, हाँ अभी उसको डायमीटर के चौथे भाग से यानी आधी त्रिज्या से गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है? क्षेत्रफल मिलता है। तो यहाँ क्या लिखा है? प्रत्यंगुल मिलते हैं। तो उनको क्या कहना चाहिए, ये क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने ठीक कहा है, प्रत्यंगुल क्यों कहा? क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल स्क्वायर में ही आएगा। ऐसा नहीं है, ये भी अंगुल में है और ये भी अंगुल में है, अंगुल गुना अंगुल प्रत्यंगुल हो गए और कुछ नहीं। जैसे उनको जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी जगत प्रतर हो जाते हैं, या सात राजू गुणा सात राजू हम प्रतर राजू कहेंगे, खाली राजू नहीं कहेंगे, उनचास राजू नहीं कहेंगे, उनचास प्रतर राजू कहेंगे। वैसे ये भी परिधि भी अंगुल में निकाली और व्यास का जो आधा है वो भी अंगुल में निकाल, व्यास का चौथा भाग वो भी अंगुल में है। तो अभी हमको ये पूरे गोल का क्षेत्रफल निकला है, तो क्षेत्रफल हमें हमेशा किस में कहेंगे? प्रत्यंगुल। अभी अंगुल में निकाला इसलिए प्रत्यंगुल, राजू में निकालते प्रतर राजू कहते हैं, योजन में निकालते तो प्रतर योजन कहते हैं, प्रतर यानी स्क्वायर। ये तो सूत्र बताए, प्रक्रिया कैसे होती है वो बताया, ये निकालने का तरीका बताया। तो इस नियमानुसार, ये नियम बताया था, इस नियमानुसार परिधि करके, पहले परिधि करना, किसकी बात चल रही थी ये भूल गए हम, मनुष्य लोक की बात चल रही थी। देखो यहाँ 14 जो लिखा है उसके ऊपर के दो लाइन, 14 सूत्र का अर्थ क्या है उसके ऊपर की दो लाइन, 45 लाख योजन विष्कम्भ और 1 लाख योजन ऊंचा मनुष्य लोक है। हमको विष्कम्भ का पता है, विष्कम्भ ने डायमीटर का पता है, 45 लाख योजन है और उसकी हाइट है 1 लाख योजन, बराबर। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, विष्कम्भ मालूम है तो पहले परिधि निकालेंगे। परिधि कैसे निकालेंगे? तो ये जो अभी नियम नया बताया सूक्ष्म परिधि निकालने के लिए, अपनी भाषा में उसको तिगुणा करो या पाए से गुणा करो, बराबर, ये परिधि निकली। फिर व्यास के चौथे भाग से गुणा किया तो क्या हुआ, वो इसका क्षेत्रफल आया। फिर हाइट 1 लाख योजन से गुणा करेंगे तो घनफल आ जाएगा। तो खाली हमने क्षेत्रफल निकाला तो प्रत्यंगुल का, एक्चुअली ये हमने योजनों में देखा था पहले, 45 लाख योजन की परिधि निकाली, फिर उसके वो जो व्यास के चौथे भाग से गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी वो तो प्रतर योजन में आ जाएगी। परंतु उसके पहले उन्होंने ये वाक्य लिखा था कि पूर्वोक्त, ये 42 पृष्ठ पर, पूर्वोक्त गुणकार क्षेत्र संबंधी विष्कम्ब और उच्छेद के अंगुल करके, ख्याल है ना, यानी 45 लाख के अंगुल करके और 1 लाख योजन के अंगुल करके, फिर ये इस मेथड से गुणा करने पर जो संख्या है वो प्रत्यंगुल में आई, इतना बताना चाहते हैं। तो इन प्रत्यंगुलों से उच्छेद से गुणित करने पर, उच्छेद यानी 1 लाख योजन के अंगुल, उनको गुणित करने पर संख्यात घनांगुल, ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी संख्या निकाली फिर भी वो संख्यात घनांगुल आई। तो मनुष्य लोक का जो घनफल है वो कितना है? संख्यात घनांगुल है। यहाँ पर भी पहले के समान अपवर्तना करनी चाहिए, अर्थात इन घनांगुलों के प्रमाण घनांगुल करने के लिए 500 के घन का भाग देना चाहिए, क्योंकि उच्छेद घनांगुल में संख्या आई डिवाइडेड बाय 500 का घन, तो प्रमाण घनांगुल में हमें वो संख्या मिल जाएगी, वो भी संख्यात घनांगुल होगी। मानांतिक समुद्घात और उपपादगत, अब यहाँ मान पहले इन दोनों को लिया नहीं था, अब इसमें कौन कौन से गुणस्थान बता रहे, देखो सासाधन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टियों का इसी प्रकार कथन करना चाहिए। अब इसमें सम्यक मिथ्या दृष्टि को नहीं लिया, क्योंकि उनमें तो होते ही नहीं है, ना ही मरण होता है, ना ही मरकर अन्यत्र उपजना है, इसलिए मारणांतिक समुद्घात को भी नहीं लिया और उपपात को भी नहीं लिया। पहले तीनों को एक साथ बता दिए थे जो कॉमन है सब में, तो स्वस्थान स्वस्थान विहारवत वेदना कषाय वैक्रेक वगैरह वो तो बातें बताई थी। इतनी विशेषता है कि ओघ सासाधन समय दृष्टि और असंयत समय दृष्टि राशि को आवली के असंख्यात भाग से खंडित करके जो एक भाग लब्ध आवे उतनी राशि उपपाद करती है। उपपाद कर के लिए आवली का असंख्यात भाग भी असंख्यात में होता है, तो ओग यानी जो गुणस्थान वाली जो राशि है दूसरे की और चौथे की, उसके असंख्यात भाग प्रमाण ही राशि उपपाद वाली होगी। उसका कारण भी उन्होंने कल बताया था, उपपाद यानी एक समय वाला है और वो जीवों की राशि में तो उनका पूरे लाइफ टाइम है, तो उसके असंख्यात भाग प्रमाण वो उपपाद में ले लेते हैं। तथा इस उपपाद राशि के असंख्यात बहुभाग प्रमाण जीव विग्रह गति से उपपाद करते हैं। जो उपपाद राशि है कहीं से मरकर आई हुई राशि है, तो उसमें से कोई तो इशु यानी रुजु गति से आते हैं और बाकी विग्रह गति से आते हैं यानी मोड़ वाली गति से आते हैं, बराबर। तो बहुभाग प्रमाण विग्रह गति से उपपाद करते हैं और एक भाग प्रमाण रुजु गति से उपपाद करते हैं। इसलिए दो बार आवली के असंख्यात भाग प्रमाण ओग राशि के भागहार स्थापित करने चाहिए, असंख्यात भाग का असंख्यात भाग, तथा एक कम आवली के असंख्यात भाग प्रमाण ऊपर गुणकार स्थापित करना चाहिए। बहुभाग लेना है ना, जैसे हमको हजार का दसवां भाग निकालना है और उसमें से बहुभाग लेना है, तो बहुभाग निकालने के लिए एक भाग की वैल्यू कितनी है, 100। बहुभाग और एक भाग ने एक भाग और नौ भाग ये होगी ना बहुभाग, तो बहुभाग की वैल्यू होगी 900। तो 10 से भाग देते हैं और एक कम 10 से गुणा करते हैं, ये बहुभाग का प्रमाण होगा। तो यहाँ लिखा है भागाकार में दो बार असंख्यात लेना आवली का असंख्यात भाग और गुणकार में एक घाटी असंख्यात। देखो इसलिए से फिर पढ़ती हूँ, इसलिए दो बार आवली के असंख्यात भाग प्रमाण ओग राशि के भागहार स्थापित करने, तथा ये यहाँ रुकना नहीं, तथा एक कम आवली के असंख्यात भाग प्रमाण ऊपर गुणकार स्थापित करना चाहिए। ख्याल है, भागाकार में दो बार आवली का असंख्यात भाग और गुणकार में एक घाटी आवली का असंख्यात भाग, जैसे हमने 10 का भाग दिया और 9 से गुणा किया वैसा, तो ही बहुभाग आता है। जगत श्रेणी के संख्यात भाग लंबे दूसरे दंड में स्थित, कल भी ये दंड की बात आई थी ना, दंड किसको कल करना कहना, हाँ देखो देखो, एक मोड़ लिया, दूसरा मोड़ लिया, तीसरा मोड़ लिया और आगे कहीं चले गए, तो ये यहाँ से मोड़ तक जो है उसको हम दंड कहेंगे, स्ट्रेट लाइन जो, एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक दूसरा दंड, दूसरे मोड़ से तीसरे मोड़ तक तीसरा दंड, तो ये क्या कहते हैं, जगत श्रेणी के संख्यात भाग लंबे दूसरे दंड में स्थित जीवों की अपेक्षा फिर भी आवली का असंख्यात भाग भागहार स्थापित करे और ऊपर घनांगुल के संख्यात भाग को निकाल कर उसके स्थान में प्रत्रांगुल के संख्यात भाग प्रमाण और संख्यात प्रत्रांगुल प्रमाण गुणकार को स्थापित करके कुछ कम डेढ़ राजु से गुणित करके अपवर्तित करना चाहिए, क्योंकि मध्यलोक से सौधर्मकल्प डेढ़ राजू ऊंचा है। अब यहाँ मारणांतिक और उपपाद की बात चल रही है, तो पहला दंड का वो संकोच होता है, ऐसा कुछ है। वो पहले में ऐसा जाएगा ना, वो जहाँ जाना है फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये दंड लंबा है। डेढ़ राजू अभी सौधर्म की अपेक्षा से है, या वहाँ से नीचे मरकर आएगा या यहाँ से मरकर सौधर्म में जाएगा, सौधर्म वो मरकर आएगा, उसकी अपेक्षा वो डेढ़ राजू हाइट वाला लेना है। इसको फिर पढ़ते देखो, वो जो डेढ़ राजू है वो जगत श्रेणी का कितवा भाग है? संख्यात्वा भाग। जगत श्रेणी सात राजू की है और डेढ़ राजू उसका संख्यात्वा भाग है, तो इसलिए क्या कहते हैं, जगत श्रेणी के संख्यात्व भाग लंबे दूसरे दंड में स्थित जीवों की अपेक्षा फिर भी आवली का असंख्यात्व भाग भागार स्थापित करे और ऊपर घनांगुल के संख्यात्व भाग को निकाल कर उसके स्थान में प्रत्रांगुल के संख्यात्व भाग प्रमाण और संख्यात प्रत्रांगुल प्रमाण गुणकार को स्थापित करके कुछ कम डेढ़ राजु से गुणित करके अपवर्तित करना चाहिए, क्योंकि मध्य लोक से सौधर्म कल्प डेढ़ राजु ऊंचा है। ये मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा क्षेत्र निकाल रहे हैं। मारणांतिक समुद्घात का भी इसी प्रकार कथन करना चाहिए। वो उपपाद का किया पहले उन्होंने, अब मारणांतिक का करें। इतनी विशेषता है कि अपने अपने गुणस्थान संबंधी राशि के असंख्यात्वे भाग प्रमाण राशि मारणांतिक समुद्घात करती है। चौथे गुणस्थान वाले जो मारणांतिक करने वाले हैं उस राशि का असंख्यात भाग प्रमाण राशि मारणांतिक समुद्घात करेगी, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। शंकाकार पूछता है, मारणांतिक समुद्घात के काल से गुणस्थान का काल संख्यात गुणा है। मारणांतिक समुद्घात तो अंतर्मूर्त वाला है और ये गुणस्थान का काल तो बड़ा है, इसलिए मारणांतिक जीव अपने अपने गुणस्थान के सर्व जीवों से संख्यात गुणहीन क्यों नहीं होते हैं? उसका समाधान नहीं, क्योंकि मरण करने वाले जीवों से उसी भव में मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जीव असंख्यात गुणे होते हैं, अथवा उपशम सम्यक्त्व के काल प्रमाण आयु के अवशिष्ट रहने पर उपशम सम्यक्त्व गुण को यानी गुणस्थान को प्राप्त होने वाले बहुत जीव नहीं पाए जाते हैं, और मारणांतिक समुद्घात के काल से गुणस्थान का काल संख्यात गुणा होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ चौथे गुणस्थान में वो मारणांतिक समुद्घात की बात हो रही है, चौथे गुणस्थान में मारणांतिक की बात चल रही है ना, तो उसमें वो जीव कम है ऐसी बात कर रहे हैं, तो मिथ्यात्व में जाने वाले जीव ज्यादा है। क्या कहते हैं उसका समाधान, जो कहा मरण करने वाले जीवों से, अभी किसी ने सम्य दर्शन प्राप्त किया तो उसमें मरण करने वाले जीवों से मिथ्यात्व में जाने वाले जीव ज्यादा है, ऐसा कहना चाहते हैं। सम्यक्त्व के साथ मरने वाले के बदले सम्यक्त्व में से छुटकर मिथ्यात्व में जाने वाले जीव ज्यादा है, यानी मारणांतिक समुदात वाले जीव सम्यक दर्शन यानी चौथे की अपेक्षा मिथ्यात्व वाले ज्यादा हो गए। और भी बात बताए कि मारणांतिक समुद्घात के काल से गुणस्थान का काल संख्यात गुणा होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, यानी गुणस्थान का काल भी इतना अल्प होता है, हो सकता है। यहाँ पर उपरिम राशि का गुणकार पूर्वोक्त ही है, क्योंकि यहाँ देव राशि की प्रधानता है, देवों की अपेक्षा ही यहाँ भी क्षेत्र निकालेंगे, देवों की राशि बड़ी है। उपपाद में तो तिर्यंच राशि प्रधान है, मारणांतिक बात की, अभी उपपाद में तिर्यंच राशि प्रधान है। इतनी विशेषता है कि असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान संबंधी उपपाद में देव प्रधान है, क्योंकि हमने देखा था तिर्यंच में असंयत सम्यक्त्व के साथ जन्मने वाले वो तो क्षायिक या कृतकृत्य वेदक होने चाहिए, वो उनकी संख्या बहुत कम है। तथा असंयत गुणस्थान संबंधी मारणांतिक समुद्घात में तिर्यंच प्रधान है, असंयत वाले जीव मरकर जो देवों में उत्पन्न होने वाले हैं तिर्यंच, उनकी संख्या ज्यादा है। हम यहीं पर रुकते हैं, इसकी बात फिर कल हम देखेंगे, ये पैराग्राफ फिर दोबारा लेंगे। जावाणी के